कृष्णपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 4 टेक्स्ट 12 दोषान् परेषां हि गुणेषु साधव गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांश च फलगुण बहुली कृष्णवो महत्तमा तेषु अविदत् भवान् अघम् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांश्च फलगुण बहुली करिष्णवो महत्तमातेषु अविदत् भवान्नघम् दोषान् परेषान् हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांश्च फलगुण बहुली करिष्णवो महत्तमास्तेषु अविदत् भवान्नघम् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांश्च फलगुण बहुली करिष्णवो महत्तमास्तेषु अविदत् भवान्नघम्।
गुणांश फल्गुन बहुली करिष्णवो महत्तमास्तेषु अविदत् भवानघम्। गुणांश्च फाल्गुन बहुली करिष्णवो महत्तमास्ते द्विध भक्तमानगम्। गुणांश्च फल्गुन बहुली करिष्णवो महत्तमास्तेषु अविद्वद्भावघनम्।
माताजी
दोषान् परेशाहितेषु साधवो गृहाणि केचिन्न भविष्यद्विजः गुणांश फाल्गुन बहुली करिष्णवो महात्ममास्ते अविद्वत् सदान्वहम्।
दोषान् फॉल्ट्स परेशान ऑफ अदर्स ही फॉर गुणेशु इन द क्वालिटीज साधव साधुस गृहणन्ति फाइंड केचित् सम न नॉट भावादृश like you, Dvija, O twice born, Gunan, qualities, Cha and Falgun, small, Bahuli Karishnava, greatly magnifies, Mahatama, the greatest persons, Teshu, among them, अविदत् फाइंड भवान यू अघम द फॉल्ट। ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ट्वाइस बॉर्न दक्ष, अ मैन लाइक यू कैन सिंपली फाइंड फॉल्ट इन द क्वालिटीज ऑफ अदर्स। सती इज स्पीकिंग दिस। लॉर्ड शिवा however not only finds no faults with others qualities, but if someone has a little good quality he magnifies it greatly. Unfortunately you have found fault with such a great soul. Purport. King Daksha is addressed here by his daughter Sati as Dvija, twice born. Twice born refers to the higher classes of men. namely the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. In other words, a Dvija is not an ordinary man, but one who has studied the Vedic literature from a spiritual master and can discriminate between good and bad. Therefore, it is supposed that he understands logic and philosophy. Sati, Daksha's daughter, put before him sound arguments. There are some highly qualified persons who accept only the good qualities of others. Just as a bee is always interested in the honey in the flower and does not consider the thorns and colors, highly qualified persons who are uncommon accept only the good qualities of others, not considering their bad qualities. Whereas the common man can judge what are good qualities and what are bad qualities. Among the uncommonly good souls, there are still gradations. And the best good soul is one who accepts an insignificant asset of a person and magnifies that great quality. Lord Shiva is also called Ashutosh, which refers to one who is satisfied very easily and who offers to any person the highest level of benediction. For example, once a devotee of Lord Shiva wanted the benediction that whenever he touched someone on the head, that person's head would at once be separated from his trunk. Lord Shiva agreed, although the benediction asked was not very commendable because the devotee wanted to kill his enemy. Lord Shiva considered the devotee's good quality in worshipping and satisfying him and granted the benediction. Thus Lord Shiva accepted his bad qualities as magnificently good qualities. But Sati accused her father, "You are just the opposite. Although Lord Shiva has so many good qualities and no bad qualities at all, we have accepted him as bad and found fault with him. Because of your accepting his good qualities to be bad, instead of your becoming the most exalted soul, you have become the most fallen. A man becomes the greatest soul by accepting the goodness of others' qualities, but by unnecessarily considering others' good qualities to be bad, you have become the lowest of the fallen souls." तो ये चौथे स्कंध के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें सती अपने पिता दक्ष को कठोर शब्दों से निंदा कर रही है और कह रही है कि किस प्रकार दक्ष शिवजी में दोष दर्शन कर रहे हैं और ये उचित नहीं। तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वो एक बार अपने एक क्लास में वर्णन कर रहे थे कि श्री प्रभुपाद से एक बार उन्होंने भेंट की और किसी भक्त के विषय में कुछ वो निंदा कर रहे थे। उस समय शिला प्रभुपाद उनको बताया कि इस जगत में 6 श्रेणी के लोग होते हैं और इन 6 श्रेणी के लोगों में दर्शन या इस जगत और जगत के लोगों को देखने का रवैया भिन्न होता है। तो सबसे पहले शिला प्रभुपाद ने बताया, प्रथम श्रेणी उनकी है, प्रथम अर्थात सबसे निकृष्ट कहा जा सकता है कि वह जो दूसरों के केवल दोष ही देखे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विजन। द लोएस्ट इज समवन हु सीज ओनली बैड, अर्थात दूसरों के अंदर केवल दोष दर्शन देखना। तो वर्णन आता है कि महाभारत में दुर्योधन इसके सुंदर उदाहरण है, क्योंकि दुर्योधन को केवल दूसरों में दोष ही दिखते थे, स्वयं में सद्गुण। और द्रोणाचार्य ने जब दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा कि राज्य में देख के आओ कि कौन लोग महान है और कौन निकृष्ट है, तो दुर्योधन ने विचार किया कि पहले द्रोणाचार्य को इस तरह हमें भेजने की आवश्यकता क्या है, देख के उनको समझना चाहिए कि मैं कौन हूं। लेकिन फिर भी क्योंकि कह रहे हैं तो फिर कसर पूरी करेंगे, अर्थात जाने से पूर्व ही उन्होंने विचार किया कि कोई आवश्यकता नहीं जाने की, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ तो दूसरा कोई है ही नहीं। और फिर चारों दिशाओं में भ्रमण करने के पश्चात लौट के आए और द्रोणाचार्य जी को कहा कि पूरे राज्य में सभी मुझे दोष से ही पूर्ण दिखे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो दोष से मुक्त था मुझे छोड़कर। तो यह दुर्योधन का दृष्टिकोण इस तरह से था। तो इसे कहते हैं दोष दर्शन की दृष्टि। जैसे नीति शास्त्र में वर्णन आता है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मन, मनस्यन्य वचस्यन्य कर्मस्यन्य दुरात्मन। महात्मा और दुरात्मा में अंतर क्या है? दुरात्मा उसके मन, वचन और कर्म में भिन्नता होती है। जो व्यक्ति मन में कुछ सोचता है, वाणी से कुछ और कहता है और अपने काय से कुछ और करता है, वो दुरात्मा है। और महात्मा अर्थात वो जो मन में, वचन में और काया से पूरी तरह समान भाव से काम करता है। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है जो दोषों से मुक्त है। और ये विषय विशेष रूप से भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन में आए हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण आंदोलन में श्री प्रभुपाद का आश्रय लिए हैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। श्रेष्ठतम स्तर को और शुद्धता को प्राप्त करने का हमारा प्रयास है। और यह सुना है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दोषों से मुक्त है। और यह भी सुना है कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भक्तों की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए हम सभी भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, भक्तों के संग में भक्ति करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि भक्तों के संग में भक्ति करते समय भक्तों के दोष दर्शन होते हैं। आरंभ में जब हम भक्ति में आए तब सारे भक्त महान लगे थे, और हो सकता है आप में से कई अभी नए हो और अभी भी लगते होंगे, तो इसलिए आपको बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन वास्तव में किसी भी संग में आप जाओ तो सर्वप्रथम केवल सद्गुण दिखते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे दुर्गुण दिखने लगते हैं। ये बद्धजीव की समस्या है। जब व्यक्ति नया नया संग में आता है सबको दंडवत करता रहता है, सबको प्रणाम करता रहता है, उसको लगता है कि सब महान है, सब श्रेष्ठ हैं। और ये मन में विचार यदि वो दीर्घ काल तक रख सके तो उसकी श्रेष्ठता है। लेकिन दुर्भाग्यवश मन में ये भावना बनती नहीं, और कुछ समय के बाद मन में लगने लगता है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत महान समझा था, लेकिन इतना महान नहीं है जैसा पहले लगा था, देखने में मुझसे कुछ गलती हो गई थी। अब धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हट रहा है, अब ज्ञान का प्रकाश हो रहा है और मैं समझ रहा हूं कि इसकी वास्तविक औकात क्या है। पहले इनको दंडवत करता था, अब केवल प्रणाम करता हूं, काफी है। तो ये समस्या सबकी है, प्रत्येक व्यक्ति की है। इसलिए इसको मैं कहता हूं सेमिनार ऑन ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग। ये इस श्लोक में किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग पर विजय प्राप्त किया जाए या दोष दर्शन पर विजय प्राप्त किया जाए, ये पूरी कुंजी प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में दे दी। सो द फर्स्ट विजन इज यू सी ओनली बैड। किसी को भी देखो, कुछ भी देखो तो केवल बुरा ही दिखता है। तो इसका मूल कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार के चश्मे से जगत को देखता है। हम सभी को भगवान ने एक दृष्टि प्रदान की है, लेकिन इस दृष्टि के पीछे मिथ्या अहंकार का प्रभाव है। सो फॉल्स ईगो इज लाइक स्पेक्टेकल। और ये मिथ्या अहंकार अलग अलग रंग का बना है, तो किसी का नीले रंग का चश्मा है, किसी के पीले रंग का, किसी के हरे रंग का, किसी के सैफरन रंग का, तो अलग अलग प्रकार का चश्मा पहने हैं सब। और जिस रंग का चश्मा पहनेंगे दुनिया आपको वैसे दिखेगी। तो अगर मैं नीले रंग का चश्मा पहनकर अभी देखूं, लगेगा कि सब लोग नीला कपड़ा पहने यहां पर, और सोचूंगा आज प्रवचन में सब लोग नीला कपड़ा पहन के क्यों आए। वास्तव में सब सफेद पहन के आए, लेकिन चश्मा नीला है। तो फिर दूसरा व्यक्ति आता है जो पीले रंग का चश्मा पहना, उसको लगता है सब पीला पहने, तो कहता है नहीं नीला नहीं पीला है। मैंने कहा नहीं नीला है नहीं पीला है, और दोनों झगड़ा शुरू कर देते हैं कि वास्तव में कौन से रंग का कपड़ा है। लेकिन मतभेद का मूल कारण क्या है? मतभेद का कारण न नीला है न पीला है, जो चश्मा है वो रंगीला है। वो चश्मे का रंग अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कपड़ा अलग लगता है। तो लोग मूल तत्व को छोड़कर केवल छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो सिद्धांत को छोड़कर यदि बाकी अन्य बातों के विषय में हम विचार करें तो भक्ति पीछे छूट जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, यदि कोई किसी को शिक्षा दे कि दो सेब और तीन सेब कितना होता है, पांच सेब, और दूसरा टीचर उनको शिक्षा देता है चार केला और एक केला पांच केला होता है। अभी दोनों गणित सिखा रहे हैं, अभी दोनों में कोई अंतर है? तो एक कहेगा नहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर सिखा रहे, तीन और दो पांच, चार और एक पांच। दूसरा का नहीं बहुत बड़ा अंतर है, ये तो सेब है और ये तो केला है, तीन सेब और दो सेब पांच होता है। बोला नहीं चार केला और एक केला पांच होता है। और केला और सेब को लेकर झगड़ा शुरू, और मूल सिद्धांत जो गणित सीखना है वो रह गया। तो उसी प्रकार भक्ति में भी कई बार मूल सिद्धांत को छोड़कर किस प्रकार से उस गणित को समझाना है, इस मसले को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम दृष्टि यह है कि दूसरों में केवल दोष देखना, टू सी ओनली बैड क्वालिटीज, दैट इज द लोएस्ट प्रिंसिपल। यहां तक कि लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। और वर्णन आता है कि जब भगवान इस जगत पे अवतरित हुए और नाना प्रकार की लीलाएं उन्होंने की, तो भी कई ऐसे लोग मिले जो केवल भगवान की निंदा ही किए। और उसके उत्कृष्ट उदाहरण है शिशुपाल। शिशुपाल भगवान के भाई थे एक प्रकार से, दूर के रिश्ते में, लेकिन शिशुपाल का भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति इतना द्वेष था कि जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ, सामान्य बालक जन्म के पश्चात आ ऊ इस तरह से रोता है, शिशुपाल जन्म के पश्चात सबसे पहले जो शब्द उनके मुंह से निकले कृष्ण के प्रति गाली। इतना द्वेष कूट कूट कर उनके हृदय में भरा हुआ था। और उसके पश्चात द्वेष भी उनका ऐसा था कि जब भी कृष्ण को देखते या कृष्ण के संबंध में कुछ बात कहते कि केवल बुरे शब्द निकलते। लेकिन कृष्ण भी बड़े सहनशील थे और कृष्ण ने विशेष रूप से शिशुपाल को कंसेशन दिया था कि एक साथ 100 गाली दे सकता है, 99 गाली, 100 गया और 100 के ऊपर हो गया तो मैं उनको समाप्त कर दूंगा। तो भगवान भी कितने सहनशील हैं, हम भी इतनी सहनशीलता कभी कभी नहीं दिखाते। कौन इतना सहनशील है तो किसी को कंसेशन दे के 100 दे सकता है, तुम मुझे 100 गालियां तक मैं सहन करूंगा, उसके बाद नहीं। अपना तो 2-4 के ऊपर ही फ्यूज उड़ जाता है, तो 100 की तो दूर की बात है। तो विचार कर सकते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत को बनाते हैं, भौतिक जगत को दोषों से पूर्ण बनाते हैं, लेकिन स्वयं भी जब लीला करते हैं तो ऐसा नहीं कि अलग कंपार्टमेंट में रहते हैं जहां उनको उन पर इस जगत के दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान जब जगत का निर्माण करते हैं और स्वयं अवतरित होते हैं, लीला करने आते हैं, तो स्वयं भी इस जगत के दोषों में भागीदार बनते हैं। अन्यथा वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में कोई उनको गालियां नहीं देता, संभव ही नहीं। कोई ऐसा विचार करेगा तो तुरंत भौतिक जगत में आ जाएगा। लेकिन भगवान कृपावश हम सभी को प्रेरणा देने के लिए कहते हैं कि भाई मैं भी यहां जगत में आकर 2-4 बुरे शब्द सुन के जाता हूं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ये कहना चाहते हैं कि जगत इस तरह से निर्माण किया गया है, यहां पे चाहे कुछ भी करो, चाहे आप पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद घन चित घन षडगुण संपन्न षडैश्वर्यशाली भगवान भी क्यों ना हो, तो 2-4 बुरे शब्द सुनने ही पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ही जिनका कभी आपके साथ बनेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं आपकी क्या बात करते हो, मेरे समय में भी शिशुपाल था जिसके साथ कोई मीडिएशन काम नहीं कर सकता था, क्योंकि शिशुपाल ने पहले ही ठान लिया था कि जैसे ही कृष्ण आए तो बस छोड़ो मत, उसको तोड़ो, जैसे ही कृष्ण को देखो तुरंत गाली देना शुरू। तो इसलिए केवल दोष देखना ये सबसे निकृष्ट स्तर है। और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में और उनके चरित्र में कभी कभी हम कुछ ऐसी वैसी बातें देख लेते हैं जो सामान्य व्यक्तियों को समझाना कठिन होता है। और कृष्ण की तुलना में प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र वास्तव में बहुत ही आदर्श है, लेकिन जगत के लोग इतने निकृष्ट हैं कि रामचंद्र जी के चरित्र में भी खोट ढूंढते। प्रभुपाद को एक सज्जन मिले, न्यूज़पेपर रिपोर्टर, और वो प्रभुपाद को कहने लगे, स्वामी जी हमने सुना है कि प्रभु रामचंद्र जी भी मांसाहार करते थे, वो भी मांस खाते थे, तो क्या हम लोग भी खा सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, रामचंद्र जी पूरा जगत को खा सकते हैं, वो विराट रूप दिखाएंगे तो पूरे जगत को उनके अंदर समा सकते हैं। कृष्ण जब लीला कर रहे थे तो अपने मुख के भीतर पूरे दावाग्नि को खा लेते हैं, मुंह खोला और दावाग्नि अंदर। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पत्र पुष्प फल के साथ अग्नि भी अर्पित करें भगवान को, कि भगवान अग्नि भी लेते हैं, नहीं। भगवान सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता। तो भले जो कुछ भी लोग कहें प्रभु और उनके लीलाओं के विषय में, ये वास्तव में बद्धजीव का मिथ्या अहंकार का सूचक है कि भगवान के शुद्ध लीलाओं को देखकर भी उसमें अपने दृष्टिकोण से केवल दोष दर्शन ही करता है। श्रील प्रभुपाद को एक रिपोर्टर मिले और वो प्रभुपाद के साथ मतभेद करने लगे। डॉम मोरेस करके एक रिपोर्टर थे उस समय, मिड डे या पता नहीं कौन सा एक ब्लिट्स न्यूज़पेपर के एडिटर, वो प्रभुपाद को मिले। प्रभुपाद उस समय पाश्चात्य देशों में थे और वो कहने लगे कि स्वामी जी यू आर इंडियन सन्यासी, व्हाट यू आर डूइंग इन द वेस्ट, आपको तो भारत में प्रचार करना चाहिए, पाश्चात्य देशों में क्या कर रहे हो, व्हाई यू हैव कम टू द वेस्ट। और वो भी डॉम मोरेस भी इंडियन ही है, तो प्रभुपाद ने उल्टा उनको पूछा, यू आर न्यूज पेपर रिपोर्टर, वॉट यू आर डूइंग इन द वेस्ट। तो वो भी चकरा गया। तो उसने कहा, स्वामी जी फॉर हायर प्रॉस्पेक्ट्स। प्रभुपाद ने कहा, मी टू फॉर हायर प्रॉस्पेक्ट्स, आई हैव कम टू द वेस्ट। क्योंकि भारत में लोगों को प्रचार कर करके थक गया, कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, सभी अपने आप को महान संत मानते हैं। इसलिए कम से कम पाश्चात्य देश में ऐसे लोग मिले जो इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार थे, इसलिए हम यहां पर आए हैं। तो कई लोगों को यह बात पचती नहीं थी कि प्रभुपाद पूरे विश्व भर में इस तरह भारत के चिर संस्कृति और हमारे धर्म का प्रचार कर रहे थे। और कई बार लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में ये इस बात की मान्यता नहीं कि आप प्रचार करो, केवल क्रिश्चियन लोगों का कर्तव्य है प्रचार वचार करना। और कई बार लोग कहते हैं, आप लोग ये हरे कृष्ण वाले प्रचार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रचार मतलब शो ऑफ, और भक्ति शो ऑफ नहीं होता। भक्ति बिल्कुल मन के अंदर करने वाली बात होती है। हम सभी को भक्ति मन के अंदर करनी चाहिए, जप जोर से नहीं करना चाहिए, कीर्तन जोर से नहीं करना चाहिए। मैं भी करता हूँ भक्ति बिल्कुल अंदर हृदय के, इतना अंदर कि मुझे भी नहीं पता क्या करता हूं मैं। तो लोग इस तरह से केवल तर्क प्रस्तुत करेंगे और अच्छी तरह प्रचार करने वाले लोगों को भी रोकने का प्रयास करेंगे। इस पूरे जगत में भगवत ज्ञान वितरित करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और जितने थोड़े बहुत लोग भक्ति कर भी रहे हैं और वितरण कर भी रहे हैं इस नाम का, उसमें भी लोग दोष दर्शन करेंगे। प्रभुपाद एक बॉम्बे में भागवत क्लास के बाद एक लाइफ मेंबर प्रभुपाद के पास आए और कहने लगे कि स्वामी जी, आपका प्रवचन तो ठीक था, लेकिन आपके जितने यहाँ पर पाश्चात्य शिष्य सब बैठे थे, मैं देखा सब लोग 100% सो रहे थे, 100% टाइम दे वर जस्ट स्लीपिंग। प्रभुपाद ने कहा, 100%? हाँ 100%। यू आर श्योर 100%? ओके 95%, 95% टाइम दे वर स्लीपिंग। प्रभुपाद ने कहा, एटलीस्ट 5% दे वर हियरिंग, यू आर नॉट हियरिंग इवन 5%, क्योंकि अगर सुनते तो इनके समान अपना जीवन समर्पित करते। केवल 5% सुनकर ये लोग इतना जीवन समर्पित कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन का क्या? तो ये विचार कीजिए। दूसरे व्यक्ति ने आके प्रभुपाद को कहा कि ठीक है, आपके इतने शिष्य वगैरह तो बैठे हैं, एक इंडियन लाइफ मेंबर ही था, वो कहने लगा, लेकिन स्वामी जी ये गीता तो ऐसी है कि मैं 48 मिनट्स में पूरा 700 श्लोक सुना सकता हूं। आई कैन रिसाइट द गीता इन 48 मिनट्स, कैन एनी ऑफ योर डिसाइपल्स डू? प्रभुपाद ने पूछा, कैन यू लीव द गीता फॉर 4 मिनट्स? गीता तुम पाठ करने की बात करते हो, लेकिन 4 मिनट गीता के आधार पर जीवन जीना आसान है क्या? तो यह है दोष दर्शन, या दूसरों में केवल दोष देखना और उनमें कोई सद्गुण नहीं देखना, यह सबसे निकृष्ट स्तर है। टू सी ओनली बैड। सेकेंड इज टू सी लिटिल बैड, थोड़ा सा कुछ बुरा देखना और उसको बहुत बड़ा चढ़ा देना। बुरा भी देखना, अच्छा भी देखना, लेकिन जो बुरा मिल गया तो बिल्कुल इस तरह झपट पड़ना कि अब मिल गया, मिल गया, जो ढूंढ रहा था वो मिल गया है, और उसको झपट लेना और फिर उसको बहुत बड़ा देना, मैग्निफाई कर देना, इस तरह से विस्तारित करना। दक्ष के यज्ञ में देखा जाता है कि दक्ष शिवजी के प्रति इतने क्रोधित हो गए कि शिवजी उठ खड़े होकर उनको सम्मानित नहीं किए। वास्तव में शिवजी की ओर से कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो परमात्मा के ऊपर सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम सहियते पुमान अपावृत, निरंतर वो परमात्मा के संपर्क में रहते हैं। जब हम किसी को प्रणाम भी करते हैं तो प्रणाम किसको कर रहे हैं? उनके हृदय के अंदर स्थित परमात्मा को। तो शिव जी निरंतर परमात्मा के संपर्क में रहते हैं तो उनको प्रणाम ही कर रहे थे, लेकिन दक्ष अपनी दृष्टि से इस बात को समझ नहीं पाया और उस दोष को लेकर दक्ष ने शिव जी की ऐसी निंदा आरंभ कर दी कि पूछो मत। और निंदा करने से पूर्व दक्ष ने अपने निंदा का एक इंट्रोडक्शन भी दिया कि अभी मैं जो कुछ शब्द कहने जा रहा हूं ये ना विचार करें कि मैं द्वेष से प्रेरित कह रहा हूं, केवल मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं बता रहा हूं। अर्थात न केवल द्वेष था लेकिन साथ साथ उसका वो परिचय भी दे रहे थे कि जो मैं कह रहा हूं वो द्वेष से प्रेरित नहीं। और फिर इस तरह से निंदा की लेकिन शिवजी की कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। तो वास्तव में ये ऐसे दोष दर्शन की दृष्टि है कि थोड़ा सा कुछ दोष दिख गया फिर उस दोष को पकड़कर उसे विस्तारित करते हैं और नाना प्रकार के अनाप शनाप शब्द दक्ष शिवजी के विषय में वर्णन करते हैं। और दूसरे उदाहरण आते हैं दुर्वास जी, जो अम्बरीश मुनि गए और कुछ देर हो गई, कुछ विलंब हो गए उनके लौटने में, तो बस दुर्वास मुनि के लौटने में कुछ विलंब हुई तो अम्बरीश महाराज जी ने थोड़ा सा जल प्राप्त कर लिया और केवल उनके उस व्रत को भंग करने से दुर्वास मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक महान राक्षस तैयार किया अपनी योग माया की शक्ति से, अपनी योग शक्ति से। लेकिन वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज की इतनी शक्ति थी, दुर्वास मुनि की भले योग की शक्ति थी लेकिन अम्बरीश की भक्ति की शक्ति थी। और भले ही विषधर भुजंग बड़ा ही शक्तिशाली हो और अपने विकराल विष के प्रभाव से नाना प्रकार के लोगों को नष्ट कर सकता है, लेकिन वही विकराल भयावह विषधर भुजंग यदि किसी दावाग्नि में प्रवेश करे तो दावाग्नि के भीतर उस भुजंग का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दावाग्नि की शक्ति इतनी है कि उस दावाग्नि में वह भुजंग या वह सर्प केवल झुलसकर नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दुर्वास मुनि का क्रोध एक सर्प की तरह था और सर्प की भांति वो फुफकार रहे थे और अपने द्वेष के विष को चारों तरफ फैला रहे थे, लेकिन अम्बरीश महाराज के हृदय के अंदर भक्ति की भावना एक दावाग्नि के तुल्य थी और ऐसे दावाग्नि के टक्कर से वह तुरंत नष्ट होकर झुलस गए। इसलिए दुर्वास मुनि अम्बरीश का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो कई ऐसे लोग होते हैं, हमारे अंदर भी यह प्रवृत्ति होती है कि किसी के प्रति कुछ द्वेष की भावना होती है और थोड़े उनके अंदर कुछ दुर्गुण देख लिया तो उसको पकड़कर हम चारों तरफ उसके विषय में विज्ञापन करने लगते हैं। तो वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर दोष तो है लेकिन उससे अधिक हमारे हृदय के अंदर द्वेष है कि उस दोष को देखकर हम प्रसन्न होते हैं और उसका विज्ञापन करते हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, सन्यासी थे और सन्यास व्रत के पालन में उनको कुछ समस्या हो रही थी। प्रभुपाद को उन्होंने अपना सन्यास डंडा भी बाय पोस्ट भेज दिया और एक साथ में कवरिंग लेटर दे दिया कि मेरी क्या समस्या है। बड़े श्रेष्ठ भक्त थे और काफी उत्तरदायित्व उन्होंने संभाला था ऑस्ट्रेलिया में। प्रभुपाद भी परेशान थे उनके उस समस्या को देखकर और विचार कर रहे थे कि किस तरह उसकी सहायता करूं। लेकिन उस समय एक और प्रभुपाद के अंतरंग पार्षदों में एक दूसरे भक्त थे जो समझ गए कि इस भक्त के जीवन में कुछ समस्या चल रही है और पता नहीं उनके हृदय में क्या भी थी, वह अन्य सभी भक्तों के बीच उनकी समस्या का वर्णन करने लगे। और ये जो सन्यासी थे, जब उनको पता पड़ा कि उनकी समस्या का विज्ञापन हो गया है, फिर कभी वो भक्तों के संग में नहीं आए। और कुछ वर्षों के पश्चात वही भक्त जो प्रभुपाद के अंतरंग पार्षदों में थे, जिन्होंने उनके गुरु भाई के दोष का विज्ञापन किया था, उनके जीवन में समस्या हुई और उनका भी पतन हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि उन्होंने उसकी समस्या का विज्ञापन किया जिससे कि वो भक्तों के संग में नहीं आ पाए, इसलिए वही समस्या फिर उनके जीवन में भी घटी। और ये प्रकृति का नियम है। जब हम दोष दर्शन करते हैं और दूसरों का दोष देखते हैं और उसका विज्ञापन करते हैं, तो समय की बात है कि वही दोष हमारे हृदय में भी प्रवेश करते हैं, या हो सकता है वो दोष हमारे अंदर ही हो इसलिए वो दोष हमें दिखते हैं और उसका प्रभाव हम पर होने लगता है। इसलिए वास्तव में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारी भक्ति के जीवन के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक स्कॉलर प्रभुपाद को मिलने आए, रविंद्र स्वरूप प्रभु, एक संस्कृत के बहुत बड़े पीएचडी स्कॉलर को ले आए प्रभुपाद से भेंट करने। वो प्रभुपाद को मिले और प्रभुपाद को पूछने लगे कि आपके भक्ति भगवद गीता का सबसे श्रेष्ठ श्लोक क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इस संस्कृत स्कॉलर ने प्रभुपाद से प्रश्न किया, ये शरणम शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा, शरणम शब्द का अर्थ है सरेंडर। तो पंडित जी ने कहा, ये संस्कृत स्कॉलर ने कहा, ये वेस्ट की बात है। कहने लगे, ये तो केवल सामान्य मीनिंग हो गया, इसका वास्तविक आंतरिक अर्थ क्या है बताइए, व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग। प्रभुपाद ने कहा, ये संस्कृत स्कॉलरों वाली बात है, हम लोग तो गुरु हैं, आई एम अ स्पिरिचुअल मास्टर नॉट अ संस्कृत स्कॉलर। तो कहने लगे, अरे आप लोग इतना कुछ प्रचार कर रहे हो लेकिन सरेंडर शब्द का अर्थ नहीं जानते। तो प्रभुपाद ने कहा, आप क्या पढ़ाते हो बताओ। तो कहने लगा, आई एम अ हिंदू टीचर, आई एम अ टीचर ऑफ हिंदुइज्म। तो प्रभुपाद ने प्रश्न किया, हिंदू शब्द का अर्थ क्या बताओ। तो कहने लगे, ये हिंदू शब्द का अर्थ बतलाना इतना आसान नहीं है, बहुत गूढ़ है और बहुत समय लगेगा। तो प्रभुपाद ने कहा, अर्थात संक्षेप में आप नहीं जानते कि इस शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात आप लोगों को ऐसा कुछ सिखा रहे हो जिसका ज्ञान आपको स्वयं नहीं है। यू आर टीचिंग पीपल व्हाट यू योरसेल्फ डोंट नो। तो फिर पास में ही भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, प्रभुपाद ने कहा, सो व्हेन समवन टीचेस समथिंग व्हिच ही हिमसेल्फ डजंट नो, व्हाट इज ही कॉल्ड। तो उन्होंने कहा, चीटर प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो ये क्या कह रहा है, आप चीटर हो। तो बिल्कुल झल्ला गया, हाउ यू कैन कॉल मी चीटर, आप मुझे चीटर क्यों बुला रहे हो बताओ। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या सिखा रहे हो। तो कहने लगा प्रभुपाद को, ठीक है आप मुझे सिखाइए। प्रभुपाद ने कहा, ऐसे मैं किसी को सिखाता नहीं, केवल शिष्यों को सिखाता हूं। तो ने कहा, ओके आई विल बिकम योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य बनता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, ओके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज शेव अप, आप शेविंग करो जाओ। तो बोले, ये क्या कर रहे हो आप। और बिल्कुल रविंद्र स्वरूप प्रभु को देखने लगे, क्योंकि वो उनको लेके आए थे, और रविंद्र स्वरूप प्रभु परेशान, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे बड़े स्कॉलर यही थे और उनको लगा था कि ये फेवरेबल हो जाएंगे इस्कॉन के प्रति, तो कॉलेज प्रीचिंग में सहायक होगा। और वहां के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट को प्रभुपाद जी चंपी कर रहे हैं यहाँ बैठ के सबके सामने। तो विचार कर रहे हैं, अब कॉलेज में जाके मेरा क्या होगा, कहीं मेरा पीएचडी कैंसिल ना हो जाए। और वो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, और प्रभुपाद एक के बाद एक उनको सुनाए जा रहे हैं। उनकी ध्वनि ऊंची चली गई, प्रभुपाद भी और ऊपर से चिल्लाने लगे जोर जोर से, और आसपास जितने भक्त लोग बैठे सब कांप रहे थे। और फिर अंत में कुछ शिष्यों ने देखा कि ये बढ़ता चला जा रहा है, तो आकर उन प्रोफेसर को कहा कि आप बाहर चलिए, अब आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था हमने की है, ऐसा कह के उनको लेके चले गए। और अगले दिन रविंद्र स्वरूप प्रभु बिल्कुल घबरा कर प्रभुपाद के पास आए, और वो डर रहे थे कि कहीं प्रभुपाद को मैंने एजिटेट तो नहीं कर दिया, परेशान तो नहीं कर दिया ऐसे आदमी को लाके, क्योंकि मुझे लगा था ये इस्कॉन के प्रति फेवरेबल होगा या प्रभुपाद से मिलकर इम्प्रेस होगा इसलिए लाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा ही निकला। तो प्रभुपाद को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभुपाद जी क्षमा करें, ऐसे आदमी को मैं लेके आया आपके सामने। तो प्रभुपाद ने कहा, चिंता मत करो, कोई आपसे भूल नहीं हुई, यह भी अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर मानता था, एटलीस्ट वी गिव हिम अ गुड चेस्टाइजमेंट, भले वो कुछ फेवरेबल बने न बने, लेकिन मैंने अच्छे से उसको डांट दिया, अब अगली बार सरेंडर के विषय में बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। तो इस तरह कई ऐसे स्कॉलर प्रभुपाद को मिलने आते हैं जो ये नहीं देखते कि प्रभुपाद जी ने क्या योगदान किया, किस तरह से विश्व में इस्कॉन की स्थापना की, किस तरह से हमारे बहुमूल्य ग्रंथों का अनुवाद किया, किस तरह गौड़ीय वैष्णव इतिहास में सर्वप्रथम ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने अंग्रेजी में ग्रंथ लिखे, ये सब कुछ नहीं देखते, केवल छोटे छोटे कुछ दोष पकड़कर उसका ही प्रतिपादन करने का प्रयास करते। सो दिस इज द सेकेंड विजन, सी लिटिल बैड, नॉट सी ऑल द अदर गुड एंड जस्ट मैग्निफाई दैट बैड क्वालिटी। तीसरी दृष्टि जो है वो ये कि अच्छा भी देखना और बुरा भी देखना, टू सी गुड एंड टू सी बैड, बट टू चूज ओनली बैड, राइट। सो फर्स्ट वॉज ओनली बैड, सेकेंड वॉज लिटिल बैड, एंड थर्ड इज यू सी गुड ऑल्सो, यू सी बैड ऑल्सो, बट यू चूज ओनली द बैड पार्ट। केवल अच्छे भी देखना और बुरा देखना, लेकिन बुरे को स्वीकार करना। और ये वर्णन आता है नारद मुनि और दक्ष प्रजापति का, कि किस तरह दक्ष प्रजापति अपने पुत्रों को भेजे नारायण सरस नाम के स्थान पर, 10,000 उनके पुत्र थे, उनका नाम था हर्यश्वस, उनको वहां भेजा उच्च शिक्षा के लिए, और जब वो घनघोर तप में लीन थे अपने चित्त को शुद्ध करने हेतु, उस समय भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां पहुंचे, और नारद मुनि ने विचार किया कि इतने शुद्ध अच्छे लोग हैं, अच्छे पुत्र हैं दक्ष के, क्यों ना इनको वैराग्य के मार्ग पर प्रेरित किया जाए। और नारद मुनि ने उनको बहुत ही जटिल प्रकार से नाना प्रकार की उपमा समझाए, और नारद मुनि के रहस्यमय शब्दों को सुनकर हर्यश्वस के दिमाग पर बुद्धि पर प्रभाव पड़ा, और उन्होंने विचार किया हम लोग हिमालय में जाएंगे, वैरागी बन गए। तो 10,000 पुत्र एक साथ वैरागी बन गए, तो विचार कीजिए दक्ष जो कि पिता थे उन पर क्या बीती होगी। एक व्यक्ति को ही ब्रह्मचारी बन जाए तो समस्या हो जाती है, 10,000 पुत्र एक साथ बन गए और वो भी हिमालय चले गए, ऐसा नहीं कि वहीं उनके शहर में कोई सेंटर था वहां ज्वाइन हो गए, वो दूर हिमालय में कहां घूम रहे हैं कोई भरोसा नहीं, संपर्क करने का कोई मार्ग नहीं, वहां चले गए 10,000 के 10,000। और विचार कीजिए इतने परेशान थे दक्ष, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे और 1,000 पुत्र पैदा किए, इसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म, और फिर वो 1,000 पुत्र को फिर उसी स्थान पर भेजे, और फिर इन 1,000 को प्रचार करने के लिए नारद मुनि फिर आए, लेकिन इस बार उन्होंने विचार किया कि इतना लंबा चौड़ा प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, अब मार्ग आसान हो गया, 10,000 पुत्रों को जाके कहने लगे देखो आप लोग सब छोटे भाई हो और आप लोगों के बड़े भाई बड़े आराध्य होते हैं, जानते हैं ना? बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं, तो छोटे भाइयों का कर्तव्य है कि बड़े भाइयों का अनुगमन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, तो आपके बड़े भाई कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? हिमालय गए हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप वहां जाओ। तो बोले हाँ आप कहते हो तो बड़े भाइयों का आदेश पालन करना चाहिए, और उनका अनुगमन करते हुए ये 1,000 भी वहां चले गए। अब दक्ष प्रजापति का तो पारा चढ़ गया, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि अब ये 10,000 और ये 1,000 ये सभी नारद मुनि के वाणी से भटक गए, मति भ्रष्ट हो गई, पथ भ्रष्ट हो गए, अब वहां चले गए, ये सब मूल कारण इनका नारद मुनि है। और नारद मुनि के अंदर भी इतना साहस था कि इतना सब करके सबसे पहले कहां गए, वापस दक्ष के पास गए। कोई सामान्य व्यक्ति साहस नहीं करेगा उस शहर में 10-15 साल तक आने के लिए। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद सर्वप्रथम नारद मुनि सीधा दक्ष के पास गए। और कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है कि दक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। दक्ष की वही प्रतिक्रिया रही, बरस पड़े, नारद मुनि को बुरा भला कहने लगे और बहुत उनके दोष दर्शन करने लगे। और भले वो देख रहे थे कि नारद मुनि महान भक्त हैं, तो कई श्लोकों में वो ये भी कह रहे थे आप भक्त हो लेकिन फिर भी भक्तों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में भक्त के वेश में हो लेकिन अभक्त हो। और इस तरह से बहुत सारे श्लोकों में उन्होंने नारद मुनि की निंदा की और फिर श्राप भी दिया कि नारद मुनि कोई एक स्थान पर नहीं रह सकते। और उनको अपने दृष्टिकोण से लगा कि यह वास्तव में सबसे बड़ा श्राप हो सकता है। लेकिन नारद मुनि के लिए श्राप बहुत अनुकूल था, क्योंकि पहले वो कहीं पर भी चले जाते तो लोग हो सकता है ऑब्जेक्शन लेते, यहां क्यों आ गए। लेकिन अब नारद मुनि के पास बोनाफाइड रीजन था, मैं क्या करूं, दक्ष का श्राप है, अपने मूड से नहीं आया हूं, एक जगह रहने का निवास स्थान ही नहीं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, उसी प्रकार कई हमारे जो शिष्य हैं उनके भी माता पिता हमको श्राप दे रहे हैं। और इसलिए मैं बैठकर ट्रांसलेशन करना चाहता हूं एक मंदिर में, लेकिन एक मंदिर में ज्यादा समय बैठ ही नहीं पाता, निरंतर भ्रमण करता रहता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे कुछ शिष्य मुझसे ये श्राप ले लें, जिससे ये श्राप ट्रांसफर कर दूं, फिर मैं शांति से बैठकर अनुवाद कर सकता हूं। जैसे गिरिराज महाराज जब भक्त बने तो उनके माता पिता बहुत परेशान थे और गिरिराज महाराज को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। साइकेट्रिस्ट को घर पे बुलाया और वो साइकेट्रिस्ट बैठकर गिरिराज महाराज को बहुत प्रश्न कर रही थी, क्यों भाई आपके जीवन में कुछ बचपन में समस्या थी क्या। तो बोलने लगे समस्या एक ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो बोला बचपन में माता पिता ने आपको परेशान किया था। तो बोले माता पिता हमारे एक है, पितामह से जगत, माता दाता पितामह, हर प्रश्न का उत्तर गीता के श्लोक से। आधे घंटे में साइकेट्रिस्ट घबरा के बाहर आई और गिरिराज महाराज के माता पिता को कहा कि आपका पुत्र बड़ा भयंकर है, उसके साथ बैठकर और थोड़ा समय में बिताऊंगी, मैं हरे कृष्ण बन जाऊंगी। उन्होंने कहा योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो गिरिराज महाराज आके प्रभुपाद को बताया कि ये साइकेट्रिस्ट का ये ओपिनियन था, ये विचार था। और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, यस दैट इज व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस डज, परमानेंटली इन्फेक्ट्स यू। अर्थात वह हृदय के अंतःकरण में कहीं जाकर छिप जाता है और चाहे व्यक्ति कुछ समय के लिए पथभ्रष्ट भी हो जाए, लेकिन नवै जना जातु कथांचना व्रजन मुकुंद सेवान्य वदंग संस्मृतिम स्मरण मुकुंदांगर उपगूहनम पुनः विहातम इच्छेन न रसग्रह हो जना। भक्त रसग्रह होता है और कुछ समय अल्प समय के लिए भी भक्ति के संपर्क में आकर कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का आस्वादन करके एक ऐसी तीव्र रस की अनुभूति होती है कि नवै जना जातु कथांचना व्रजेन मुकुंद सेवा। भले ही मुकुंद की सेवा को त्याग कर कुछ समय पथभ्रष्ट हो जाए, लेकिन भक्तों के संग में किए गए सेवा, भक्तों के संग में आस्वादन किए गए नाना प्रकार के अनुभव ऐसे भक्त की स्मृति में निरंतर चलते रहते हैं और इसलिए वह खींचकर वापस भक्तों के संग में चला आता है। वह विचार करता है, कल्पना करता है कि भक्तों के संग में कितना आनंद था, कितनी सुकून थी, कितना चैन था, कितना बढ़िया प्रसाद था और कितना अच्छा यहाँ पर भक्तों ने मेरे साथ व्यवहार किया। तो ये सब वह स्मरण करके अंततोगत्व वापस खींच कर आ जाता है। तो इसलिए भक्ति में जितने हमारे अनुभव होते हैं सकारात्मक होते हैं, तो हमें इस दोष दर्शन से बचना है कि अच्छे और बुरे को देखकर केवल बुरे को स्वीकार नहीं करना है। ये बहुत ही निकृष्ट प्रकार का दर्शन है, टू सी गुड एंड बैड एंड टू एक्सेप्ट ओनली बैड। एक भक्त प्रभुपाद को कह रहे थे, प्रभुपाद जी ये भक्त तो ऐसे कर रहा है, प्रभुपाद ये भक्त तो बस फलाना फलाना कहता है, ये भक्त तो पता नहीं ऐसे ही करता रहता है, ये भक्त तो ये भक्त ये भक्त ये भक्त। प्रभुपाद ने कहा वेट वेट, अभी हरे कृष्ण आंदोलन में भक्त कौन है? केवल एक ही भक्त है, वो मैं। और बाकी सभी लोग अभी हरे कृष्ण जप रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी कोई भक्त नहीं है, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो। तो ये प्रथम बात समझना आवश्यक है कि अभी हम लोग एक दूसरे को केवल संबोधन की दृष्टि से डिवोटी डिवोटी कह देते हैं, है कि नहीं? नया आदमी आया तो कह देते हैं, ओ न्यू डिवोटी हैज कम। वो तो अभी अपना सिगरेट पीना भी छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कहने की दृष्टि से हम लोग कह देते हैं डिवोटी। लेकिन वास्तव में क्या है? वी आर ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ डिवोटी। लेकिन बार बार ये बोलने में बहुत जटिल होगा, इसलिए हम लोग डिवोटी बोल देते हैं, है कि नहीं? बार बार बोलने से कॉल दिस सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ, ये सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बार बार नहीं हो सकते, इसलिए डिवोटी 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 बोल देते हैं। लेकिन अपने निजी मन में ये भावना होनी चाहिए कि अभी डिवोटी की उपाधि से हम बहुत दूर हैं। इनिशिएशन सेरेमनी के बाद कुछ भक्त प्रभुपाद से चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद, यू गेव दिस नेम अर्जुन दास टू हिम, यू गेव दिस श्याम दास टू हिम, यू गेव मी दिस नेम सो एंड सो दास। तो इस तरह से वो थोड़ा कंप्लेन टाइप का कर रहा था कि उनको जो नाम मिला वो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा। ऐसे भी कई बार भक्त लोग परेशान हो जाते, क्या नाम दे दिया मेरे को, ऐसा क्यों नाम दिया, और इस नाम का अर्थ क्या है, इस तरह प्रभुपाद को पूछने लगे। तो प्रभुपाद सेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेम इज दास। तो उसके आगे जो भी लगाओ वो तो ठीक है, इंसिडेंटल है, लेकिन सबसे प्रमुख जो पार्ट है आपके नाम का वो क्या है? दास। वो समझ गए ना, वो सबका समान है, और उतना समझ गए तो बहुत हो गया। तो एक दूसरी भक्त प्रभुपाद के पास आई, उनको प्रभुपाद जी ने नाम दिया था गुणमयी देवी दासी। तो नाम पाकर उनको लगा कि पता नहीं प्रभुपाद ने क्या इस तरह के कुछ गुण देखे होंगे कि इस तरह का नाम मैंने पाया। तो प्रभुपाद को पूछने लगी, प्रभुपाद जी आपने इस तरह का नाम मुझे क्यों दिया? और ऐसा नहीं पूछा, पूछा कि ये नाम के पीछे वास्तव में तात्पर्य क्या है, गुणमयी इस तरह का नाम क्यों दिया? प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज यू आर फ्रॉम लगुना बीच, आप लगुना बीच के हो तो गुना गुना मिलता है, इसलिए गुणमयी डाल दिया। तो बिल्कुल वो शांत हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके मन में एक अहंकार की भावना आ रही थी, कि उनको लग रहा था कि गुणमयी मतलब हम ही गुणमयी, लेकिन वास्तव में गुणमयी राधा रानी है, तो उनकी वो दासी है। तो इस तरह से हमें चाहिए कि अच्छे और बुरे में बुरा को न देखें। ये तीसरा, टू सी ओनली बैड नॉट टू सी गुड। चौथा स्तर है, अब कुछ सकारात्मक स्तर पर हम आ रहे हैं, ऑन द पॉजिटिव साइड, और वो ये, टू सी द गुड एंड द बैड बट टू चूज द गुड। अच्छा भी देखना और बुरा भी देखना, लेकिन किसे स्वीकार करना? अच्छे को। ये फोर्थ स्टेज है, और ये अंतिम जो तीन है ये वास्तव में अनुकरण करने योग्य है। वी हैव टू ट्राई टू डेवलप दिस विजन, एनी ऑफ दिस थ्री, द लास्ट थ्री विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इससे पूर्व जो तीन है हम अभी उस स्तर पर हैं, कम से कम मैं उस स्तर पर हूं, लेकिन अभी हमको जाना है ऊंचे स्तर पर, जिसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। टू सी गुड एंड बैड एंड टू एक्सेप्ट और चूज ओनली द गुड। और उसके बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण भागवत में आते हैं विदुर जी के। तो आप लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन एंड कंपनी ने मिलकर विदुर जी का क्या हाल बेहाल किया। पूरा जीवन उन्होंने हस्तिनापुर के राजगद्दी के सुरक्षा हेतु निकाल दिया था, धृतराष्ट्र के हित के हित को अपने मन में रखकर ही विदुर जी प्रत्येक कार्य करते थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के बहुत विशेष हितैषी थे, शुभ चिंतक थे। विदुर जी पांडवों के साथ प्रेम करते थे और धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि का पांडवों के साथ दुर्व्यवहार को देखते हुए भी विदुर जी कभी धृतराष्ट्र को त्यागे नहीं। एक सम्मान की भावना थी, विचार करते थे कि हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, एक प्रकार का सम्मान था। और ये वास्तव में विदुर जी का बड़प्पन था, उनकी महानता थी, उनकी उदारता थी कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के नाना प्रकार के दोषों को देखकर भी संग विच्छेद नहीं किया। तो विचार कीजिए, विदुर जी इतने महान भक्त, अन्य भक्तों के ही शोषण और दुर्व्यवहार को देखकर भी दीर्घ काल तक कितना कुछ सहन किए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की यही इच्छा है, मुझसे यही अपेक्षा है, और इसलिए वो उस लीला में वो अपना एक भाग अदा कर रहे थे। और अंत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने मिलकर विदुर जी को राजमहल से निष्कासित कर दिया, और वो भी तब जब विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र को ये बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि आपके भविष्य की सुरक्षा हेतु दुर्योधन का संग त्याग अति आवश्यक है, यदि आप दुर्योधन को नहीं त्यागोगे आपका विनाश निश्चित है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, कृपा करके इस दुर्योधन को छोड़ दो। इसलिए वो कह रहे थे कि ये अपत्य मत्य है, आप इसको अपना अपत्य मानते हो लेकिन वास्तव में अपत्य मत्य है। पुरुष द्विदाष्टे गृहान प्रविष्ट यद अपत्यमत्य, आपके घर में प्रवेश किया है पुत्र के रूप में लेकिन वास्तव में वो पुत्र नहीं है, आपको लग रहा है कि आपका पुत्र है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही विष्णु के विमुख है, तो विष्णु के विमुख है तो भविष्य में चलकर क्या विष्णु के प्रति ये कोई भी संस्कार करने वाला है आपकी मृत्यु के बाद। पुत्र का तब तक ही लाभ है जब मृत्यु के पश्चात वो कुछ करे, लेकिन ये तो अभी कृष्ण का द्वेषी है तो आपकी मृत्यु के बाद क्या कुछ करने वाला है, कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो इसको। लेकिन धृतराष्ट्र को इतना समझाने के बाद भी वो समझे नहीं, उल्टा दुर्योधन ये सब सुनकर विदुर जी को निष्कासित कर दिया। सइत्थम अत्युल्बन कर्ण बाणैर, ये सब सुनकर ये कर्ण के बाण उनके हृदय को भेद दिए, लेकिन फिर भी उनके उस साम्राज्य को त्याग कर विदुर जी चुपचाप चले गए। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम, स्वयं धनुर्द्वारी निधाय, अपना जो बाण था, धनुष था, वो वहीं द्वार पर छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई सेवा नहीं था, क्योंकि हस्तिनापुर की सुरक्षा उनका उत्तरदायित्व था, इसलिए धनुष और बाण वो रखते थे, अब नहीं था तो छोड़कर चले गए। जीवन पर्यंत उन्होंने अपना जी जान, अपना प्राण केवल धृतराष्ट्र और दुर्योधन और हस्तिनापुर की सेवा में लगाई, और जीवन भर के परिश्रम के बदले में अब उनको क्या मिल रहा था? केवल अपमान, केवल कुशब्द, अपशब्द। तो कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है कि कितने दुख की घटना होगी, लेकिन फिर भी विदुर जी अपने हृदय में धृतराष्ट्र के प्रति कोई कटु भावना नहीं रखे। और जब पता पड़ा कि अब धृतराष्ट्र निस्सहाय अवस्था में हस्तिनापुर के ही राज्य में, हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों के साथ जीवन व्यापन कर रहे हैं, केवल उदारतावश, केवल कृपावश वो पुनः लौट के आए, और लौटकर फिर धृतराष्ट्र को कथा के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से वैराग्य और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे थे। विचार कीजिए यह कितना कठिन है। तो ऐसा नहीं कि विदुर जी धृतराष्ट्र के दोष नहीं देख रहे थे, जानते थे कि वो कितना दोषी है, और वो उनको कह भी रहे थे, कह रहे आप तो इतने बूढ़े हो गए हो, है कि नहीं, कि अंध पुरैव वधिरो मंद प्राज्ञं तु संप्रदान विशीर्ण दंत मंदाग्नि सरांग कफोद्वहन, आप तो पहले से अंधे थे अब तो बहरे भी हो गए हो, मंद प्राज्ञन, और आपकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आपका डाइजेशन सिस्टम नहीं चल रहा, मंदाग्नि से आप पीड़ित हो, विशीर्ण दंत, आप दांत भी गिर रहे हैं और गले में भी इतना कफ भर गया कि खांसते हो तो अलग अलग प्रकार के राग निकलते हैं। सर राग कफ मुद्वहन, अब तो आपको लज्जा करनी चाहिए, इतना अपमान होने के बाद भी आप यहाँ पड़े हुए हो और भीम के फेंके हुए टुकड़े पे पल रहे हो एक कुत्ते की भांति, निकलो यहाँ से। कुत्ता भौंका जोर से। तो देखिए इतने कठोर शब्दों से उनकी निंदा की, तो जानते थे कि वास्तव में दोष तो है ही, लेकिन फिर भी क्या विचार किया, इनके अंदर वो आत्मा बैठी है जिसके अंदर भगवान की भक्ति की एक चिंगारी कहीं तो जल रही है, और यदि उसको अनुकूल परिस्थिति दी जाए तो वास्तव में ये भक्ति की दावाग्नि चारों दिशा में फैलकर उनके हृदय के अनर्थों को नष्ट कर सकती है। ऐसा विचार करके वह उनको प्रचार कर रहे थे और उनके प्रचार का प्रभाव पड़ा और धृतराष्ट्र सब कुछ त्याग कर फिर वन में चले गए और कम से कम अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में भगवान की भक्ति वो किए। तो एक पूरा श्रेय विदुर को जाता है, एंटायर क्रेडिट गोज टू विदुर, बिकॉज ही सॉ गुड एंड बैड बट चूज ओनली द गुड। और उदाहरण आते हैं हमारे प्रहलाद महाराज, जो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, चाहे उसने जो कुछ भी किया हो, आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया, लेकिन कम से कम प्रेम से मुझे गोद पे बिठा था, पिता का मुझ पर प्रेम था और बड़े प्रेम से वो कई प्रश्न वगैरह मुझसे पूछते रहते थे, भले उसके उत्तर मैं उल्टे देता था, उनके अपेक्षा के अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी एक प्रेम की भावना थी, मेरे पिता थे, उनको मुक्त कर दीजिए। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, इस तरह से हिरण्यकश्यपु झल्लाकर प्रहलाद महाराज को गालियां देते। हे दुर्विनीत, दुर्विनीत अर्थात हे उद्दंड अर्थात बदतमीज, बोलने की शिष्टाचार से जो परिचित नहीं है, दुर्विनीत। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं वास्तव में हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को गाली नहीं दे रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे, क्योंकि दु अर्थात दुखालय अर्थात भौतिक जगत, वी अर्थात विशेष रूप से और नीत अर्थात लाए गए। तो वास्तव में हिरण्यकश्यपु प्रहलाद की स्तुति कर रहे थे, हे दुर्विनीत अर्थात हे प्रहलाद, हे मेरे पुत्र, आप जैसे महान संतों को विशेष रूप से इस भौतिक जगत में मुझ जैसे असुरों के उद्धार के लिए लाया गया है, इस तरह से उनकी स्तुति वो कर रहे थे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं क्योंकि प्रहलाद अपनी दृष्टि से उनकी गालियों को नहीं देख रहे थे, केवल ये देख रहे थे कि इनके शब्दों में भी कुछ अच्छे शब्द दिखें तो कैसे उसे स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट द गुड इन व्हाट वॉज स्पोकन इवन इफ दैट वॉज बैड, तो ये विशेष बात है। और ये ध्रुव महाराज की मां के अंदर भी देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज की मां सुनीति के पास ध्रुव गए और ध्रुव ने शिकायत की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ व्यवहार हुआ, और मेरी सौतेली मां सुरुचि ने कहा है कि यदि मुझे उनके कोख से जन्म लेना है, मुझे राज गद्दी पर बैठना है, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वो क्या, कि मैं भगवान नारायण की भक्ति करूं। तो वास्तव में सुनीति ने कहा कि वास्तव में तुम इतने अपमानित क्यों हो गए हो, मेरे विचार से तो आपको अपमानित अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुरुचि ने कहा है वो उचित कहा है कि भगवान की भक्ति करो, बहुत बढ़िया कहा है, तो वास्तव में आपको उनके शब्दों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद को मिलने के लिए एक मायावादी आए यहाँ पर चेन्नई में, और वो प्रभुपाद के गीता को लेकर, अलग अलग श्लोकों को लेकर प्रभुपाद के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तर्क कर रहे थे। स्वामी जी, दिस सिक्स चैप्टर, दिस श्लोका, देयर इज नो भक्ति रिटन एंड यू आर सेइंग कृष्णा सेज दिस, कृष्णा सेज दिस। तो प्रभुपाद ने कहा विच वर्स, बोला 6.00। प्रभुपाद ने कहा ओके, वेयर इट इज सेड, तो सी हियर इन पर्पोट यू आर सेइंग that this is not practical for this age, so one should chant Hare Krishna. There is no Krishna in that shloka. So Prabhupada ne kaha, which other shloka? So ek dusra shlok uthaya. Ye shlok mein bhi Swami ji, aisa nahi kaha gaya hai, Krishna ka koi naam nahi aata. Aap word to word mein Krishna dete ho, tatpare mein Krishna ka naam lete ho, yahan bhakti kehte ho. Prabhupada ne kaha, which other shloka? Ek aur shlok uthaya. Here also is no Krishna, but aapke usme Krishna aata hai, yahan Krishna aata hai. To Prabhupada is tarah ek ghante tak alag alag doubt puch rahe the, kahan kahan galti hai batao. Aur bhakt log vichar kar rahe the, Prabhupada ka alag hi style lag raha hai aaj. Kyunki pehle to kabhi mayavadi dikh gaya to turant cheer phad kar dete the, aur yahan ek ghante tak puch rahe which shloka, to wo mayavadi prasad leke chala gaya. To bhakton ne pucha, Prabhupada aapne is tarah se vyavhar kyon kiya? Prabhupada ne kaha, dekho एक घंटे तक वो कृष्ण का कीर्तन कर रहा था. अलग अलग श्लोक को लेके कृष्ण सेजियर, यहाँ पे कृष्ण, वहां पे कृष्ण, कितना कृष्ण का नाम लिया. अगर केवल मैं तर्क करता तो कृष्ण का नाम कभी नहीं लेता था वो. और इसको क्या फिलॉसफी समझ में आने वाला है, तो कम से कम कृष्ण का नाम ले लेके प्रसाद लेके धीरे धीरे वो फिलॉसफी समझेगा. इसलिए मैंने विचार किया उसको कृष्ण का ही नाम लेने दो. दैट इज वाई आई डिड नॉट इंटरप्ट हिम. तो प्रभुपाद का भी अलग अलग समय पर देश काल पात्र के अनुसार प्रचार का स्टाइल अलग होता था. आगे एक जो पांचवा दृष्टि है वो ये कि टू सी ओनली गुड, दिस इज द फिफ्थ विजन. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, टू सी ओनली बैड. देन उसके बाद to see little bad and magnified. Then we saw to see the good and bad and accept only the bad. Then to see the good and bad and accept only the good. Now fifth is to see only good. Only good. Nothing else but good. Keval achha dekhna. केवल सकारात्मक दृष्टि से ही देखना, दोष दर्शन बिल्कुल नहीं करना. और इसके उत्कृष्ट उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज. युधिष्ठिर महाराज कौरवों में, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि में भी कभी दोष दर्शन नहीं करते थे. उनके अंदर भी वह केवल सद्गुण ही देखते थे. और युधिष्ठिर महाराज के इस दृष्टिकोण से भीमसेन और बाकी लोगों को कई बार बहुत समस्या होती थी, क्योंकि वो सब तैयार रहते थे कि अब हम लोग इनको पीटेंगे. और युधिष्ठिर महाराज कहते, नहीं नहीं, ये भले हैं, नेक हैं, सज्जन हैं, कितने अच्छे हैं. और भीमसेन बिल्कुल उबलता रहता था और विचार करता था कि कैसे इनको अच्छा दिख रहा है. तो विचार कीजिए, पांडवों की एकता भी अपने आप में एक पूरे इतिहास में बहुत ही प्रशंसनीय बात है. पांचों के पांच अलग अलग पर्सनैलिटी, लेकिन पांचों एक साथ रहते थे, निवास करते थे, कार्य करते थे, भक्ति करते थे, और एक द्रौपदी को साथ शेयर करके रहते थे. और वो भी सबके अलग अलग दृष्टिकोण. कहां भीमसेन कभी कुछ क्रोध आ जाए तो पकड़ के बिल्कुल चूर कर दे, और दूसरे युधिष्ठिर महाराज किसी को देख कर भी कहे, नहीं नहीं, जो किया भूल जाओ, उसको क्षमा कर दो. तो यहां पर कई बार हम लोग कहते हैं, हम लोगों का पर्सनैलिटी नहीं जमता, इसलिए हम यहां पर इनके साथ नहीं कर सकते, ये डिपार्टमेंट में उनके साथ नहीं कर सकते, ये यहां मैं इनके साथ नहीं रह सकता, ये वो नाना प्रकार के हमारे समस्याएं होती हैं. लेकिन यदि पर्सनैलिटी क्लैश का कोई स्कोप था तो पांच पांडवों में उससे ज्यादा कोई स्कोप था ही नहीं. पांचों के एक से एक, और वो भी ये नहीं कि सब लोग बिल्कुल कोई निकृष्ट थे या कम थे, पांचों एक से बढ़कर एक शक्तिशाली भी थे. तो कभी भीमसेन के मन में ये विचार आता और क्रोध का पारा चढ़ता तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे. और जब उस समय, जब राजमहल में, राज दरबार में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था और युधिष्ठिर महाराज एक के बाद एक सबको दांव पे लगा रहे थे, तो भीमसेन को क्रोध आ रहा था, और फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को ही लगा दिया दांव पे, तो उसका क्रोध और बढ़ गया बिल्कुल, और उच्च स्वर में चिल्लाने भी लगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. और फिर अर्जुन ने उनको शांत किया. तो वास्तव में उनका भी आत्मसंयम काफी था कि कुछ उन्होंने वास्तव में किया नहीं। कलयुग में तो लोगों की शक्ति भीमसेन की बिल्कुल 1/10,000वां गुण भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उद्वेगित होते हैं तो बहुत कुछ कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे यूपी असेंबली हाउस में सारे जो माइक्रोफोन है वो बिल्कुल स्थित किए गए हैं, सारे चेयर और टेबल भी स्क्रू और नट से टाइट कर दिया गया है, क्योंकि वहां असेंबली में जब कोई बिल पे डिस्कशन होता है तो सबसे पहले माइक से शुरू करते हैं फेंकना, और जब क्रोध बढ़ जाता है तो चेयर भी उठा के पटक देते हैं। तो भीमसेन को वास्तव में क्रोध तो काफी आता था और शक्ति भी काफी थी, लेकिन फिर भी अपने आप को पूरी तरह संयमित किए। तो देखिए, युधिष्ठिर महाराज के अंदर केवल सद्गुण देखने की भावना रहती, और कई बार हमारा मतभेद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की दृष्टि के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। हो सकता है 4-5 लोगों का उत्तरदायित्व है कुछ निर्णय लेना, या किसी इश्यू पर, किसी मुद्दे पर, किसी व्यक्ति के विषय में, और 4 आदमी या 4 अलग अलग कैटेगरी में है। कोई कैटेगरी 1 से देखता है, कोई 2 से देखता है, कोई 4 से देखता है, 5 से देखता है, तो कैसे वो लोग एक मत हो सकते हैं किसी एक व्यक्ति या इश्यू के बारे में या विषय के बारे में? तो मतभेद हो गई, एक कहेगा नहीं ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, तो दूसरा कहे कि नहीं नहीं कहा क्या बुरा है, हरे कृष्णा तो जप रहा है, कितना अच्छा आदमी। तो वास्तव में एक ही व्यक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके देखने का दृष्टिकोण अलग है, अलग अलग कैटेगरी से वो देख रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं, इसलिए वही व्यक्ति वही मुद्दा उनको बिल्कुल विपरीत लग रहा है। तो उसी प्रकार जब दुर्योधन वगैरह एक साथ अपने पूरे सेना के साथ पांडवों पर आक्रमण करने के लिए वन में प्रवेश किए, चित्ररथ नाम के गंधर्व ने उनको हस्तगत कर लिया और उनको मारने वाला था, उनकी हत्या करने वाला था, तो सारे कौरव सैनिक भागे भागे गए और युधिष्ठिर महाराज से आग्रह करने लगे, बचाओ, दुर्योधन को हस्तगत कर लिया है और उनको अभी जान से मारने वाले हैं। तो भीमसेन की प्रतिक्रिया थी, जो हम लोग नहीं कर पाए वो चित्ररथ कर रहा है, करने दो, बहुत बढ़िया है, हमको तो ये अनुमति कभी देते नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज की प्रतिक्रिया थी, नहीं भीम ऐसे मत कहो, क्योंकि भले वो हमारे विरोध में हो, लेकिन जब कोई दूसरा पार्टी हम पर आक्रमण करता है, हम लोग 105 हो जाते हैं। अब भीमसेन ने कहा, लो ये चांस भी गया। अब सोचिए, युधिष्ठिर महाराज उस समय केवल इतना कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चित्ररथ और उसके बीच का मामला है, हम लोग अभी पहले यहाँ बहुत बिजी हैं। इतना कह देते तो उसके बाद फिर महाभारत का युद्ध होता ही नहीं था, वही सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने हस्ताक्षेप किया, और हस्ताक्षेप क्यों किया, क्योंकि वह केवल अच्छा ही देखते थे। युधिष्ठिर ने यह नहीं देखा कि दुर्योधन ने किस तरह अपमानित किया, क्या क्या हमारे साथ नहीं किया। अरे सामान्य व्यक्ति तो छोटे मोटे इंसल्ट जीवन भर भूलता नहीं, और ये तो दूर की बात कि उनकी धर्म पत्नी को पूरे राजसभा में सबके सामने किस तरह लज्जित किया गया, कौन व्यक्ति क्षमा कर सकता है क्या? तो युधिष्ठिर महाराज कोई सामान्य श्रेणी के व्यक्ति नहीं थे, और व्यक्ति तो निरंतर फिर स्वप्न देखता रहता है, प्लानिंग करता रहता है कि कैसे इसको बर्बाद करें, और यहां दुर्योधन की बर्बादी के जितनी योजना थी वो सब पूर्ण हो गई थी, चित्ररथ तलवार लेके खड़ा था मारने, और युधिष्ठिर का नाम भी बदनाम नहीं होता, युधिष्ठिर का जो रिकॉर्ड था वो भी सही रहता, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने कहा नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्जुन को भेजा उसको बचा लो। वन हु सीज ओनली गुड, केवल जो अच्छा ही देखे। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्तर है दर्शन का, अच्छा देखना, टू सी ओनली गुड एंड नॉट टू सी बैड। एक भक्त प्रभुपाद को कंप्लेंट कर रहे थे अपने अथॉरिटी के बारे में, कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ये हमारा अथॉरिटी तो है, लेकिन वो इतना सेवा में लगा रहता है कि वो अपना 16 माला भी पूरा नहीं करता। तो प्रभुपाद ने उस भक्त को कहा, अर्जुन क्या कुरुक्षेत्र के रणभूमि में 18 दिन 16 माला करता था क्या? तो भक्त चुप हो गए, ये तो बारे में सोचा ही नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, ये मत देखो कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, तुम्हारा कर्तव्य सेवा करना, उसके साथ जो व्यवहार करना होगा मैं करूंगा। तो प्रभुपाद ने देखा कि उस भक्त के अंदर ये दोष दर्शन की भावना ठीक नहीं थी, इसलिए उनको चुप करा दिया। ये आर्ग्यूमेंट अपने लिए नहीं है कि हम लोग भी ये सोचे, हाँ अर्जुन ने तो 18 दिन नहीं किया 16 माला, तो ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने, तो साल के भी मैं 18 दिन थोड़ा निकाल के रखता हूं अलग, कंपनी में कैजुअल लीव और अपने भक्तों के संग में 18 दिन का अलग कैजुअल लीव जिस दिन मैं माला नहीं करूं। वो उस समय प्रभुपाद ने देखा कि उस व्यक्ति के दोष दर्शन को बंद करने के लिए ये आवश्यक है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने कह के उसकी रक्षा की और देखा कि केवल सद्गुण ही देखना चाहिए, कितनी सेवा करता है वो देखो। और अंतिम जो दृष्टि है वो ये, द लास्ट विच प्रभुपाद मेंशन स्पेसिफिकली इन द पर्पोर्ट, टू सी लिटिल गुड एंड मैग्निफाई इट ग्रेटली। थोड़ा सा सद्गुण देखो और उसको विस्तारित करो। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, There are many good souls, but the uncommonly good soul sees little good. कठिन है, लेकिन हमें भी अपने भक्ति के जीवन में कुछ आदर्श चाहिए, तो इसलिए हमें इन आदर्शों को मन में रख कर चलना है। पता नहीं किस जीवन काल में या किस समय इस तरह का व्यवहार हमारे अंदर आए, लेकिन कम से कम इसके विषय में जानकारी तो होनी चाहिए। और इसमें श्रेष्ठ है महाराज परीक्षित, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलानि आशुषिध्यन्ति नेतरानि कृतानियत। महाराज परीक्षित ने साक्षात मूर्तिमान कली को क्यों क्षमा किया? न अनुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक् क्यों क्षमा किया? कलेर दोष निधे राजन, कली तो दोषों का सागर है, दोषों के सागर को क्यों क्षमा किया? सारभुक् क्योंकि महाराज परीक्षित सारंग है, अर्थात वो सार ग्रहण करते हैं। ही वॉज एक्सपर्ट इन टेकिंग द एसेंस। तो उन्होंने कलेर दोष निधे को नहीं देखा, दोषों के सागर कली को नहीं देखा, कली के अंदर एक सद्गुण क्या है उसको पकड़ा। वो क्या है? कुशलानि आशुषिध्यन्ति न इतरानि कृतानि। कलियुग के अंदर एक सद्गुण, देयर इज ओनली वन गुड क्वालिटी इन कलियुग, व्हाट इज दैट? यू डू समथिंग गुड इन योर माइंड, यू गेट द क्रेडिट्स फॉर इट। यू डू सम नॉनसेंस इन द माइंड, यू कमिट अ सिन मेंटली, you won't get punished for it. That is the good quality, double advantage of Kali Yuga. Man mein chahe kitna paap karo, dand nahi milega. Man mein koi achha karya karo, uska punya ka phal turant mil jayega. Kya Kali Yuga hai, wah. Hai ki nahi? Jai jaikar nahi karenge. Lekin vastav mein, ye double advantage dusre kisi yug mein nahi. दूसरे युग में मन में विचार किया कि मैं ये फलाना फलाना इंद्र तृप्ति कर रहा हूं, तुरंत अकाउंट स्टार्ट। अगर मन में कल्पना की कि अवैध स्त्री संग या नशापान या ये या वो, तुरंत यमदूत नोट करना शुरू कर देते। तो सोच लीजिए कलयुग में यदि अपने मन में इस तरह का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो क्या हाल होगा, कितनी बड़ी समस्या होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमको छूट है मन में पाप करने का, क्योंकि वो मन के अंदर जो पाप की भावना है वह वास्तव में फलित हो सकता है। इसलिए मानसिक रूप से हमें शुद्ध होने का प्रयास करना है। लेकिन मन में आप विचार करो कि अरे मैं अब भगवान के लिए एक 50 करोड़ का मंदिर बांध रहा हूं, और मन में आप विचार करो सोने की दीवारें होंगी, और सोने का फर्श होगा और भगवान के लिए चांदी का फ्लूट होगा जिसमें सुंदर सुंदर डायमंड्स लगे होंगे और फिर राधा रानी के वस्त्र पे केवल सोने के ही रेशम से और पूरी तरह से वो सजे हुए और फूल भी लाऊंगा नंदन कानन से। तो मन का क्या है, मन में तो कोई लिमिट है ही नहीं, कहीं भी घूमो, कहीं भी घूम के कहीं भी कुछ भी तोड़ के लाओ और कहीं भी कुछ भी खड़ा करो। तो मन में आपने ये सब संकल्प किया, मानसिक ध्यान किया, तो आपको ये सेवा का फल मिल जाता है तुरंत। लेकिन वो तब करना है जब आपसे वास्तव में हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी के लिए कोई आके बोला प्रभु जरा 500 रुपए देना, रुको हो गया दे दिया, जाओ आप, मुझे जो फल मिलना था मिल गया, आप जाओ। ऐसा करो, आप भी आंख बंद करके विचार करो कि मिल गया है फल, डोनर ने दे दिया है, ऐसा थोड़ा मेडिटेट करो, हिसाब बराबर हो जाएगा। चलो ऐसा नहीं, या ये नहीं सुबह सुबह अलार्म बजा, अलार्म बंद करके मनी मन विचार किया अब मैं उठ गया हूं, माला चल रहा है, माला चलेगा, माला हो गया, ये नहीं चलेगा। जो कर सकते हो वो करना है, लेकिन जितना अपने से समर्थ है उससे परे वो आपको मनी मन यदि आप करो तो भगवान को स्वीकार है। उदाहरण के लिए वसुदेव जी जेल में थे, कंस के कारागृह में, तो कंस के कारागृह में कृष्ण के जन्म के पश्चात वो कोई दान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मनी मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें सोने से, स्वर्ण से और नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत सुसज्जित उन्होंने दान किया। लेकिन कंस के हत्या के पश्चात जब फिर वो कारागृह से छूटे तो सबसे पहले वसुदेव जी ने क्या किया, वास्तव के 10,000 गायें ली और दान में दिया। ये नहीं सोचा कि बच गए, उस समय अपन अंदर थे, 10,000 गायों की बचत हो गई। कलयुग में अपना दिमाग ऐसे ही चलता है कि कोई दान देने का चांस से बच गए तो लगता है बच गए, अच्छा हो गया। लेकिन कंस उस समय वसुदेव जी ने सबसे पहले वो 10,000 गायें दी, उसके पश्चात फिर बाकी कार्य किए। तेरी सामर्थ्य हो तो करना चाहिए, सामर्थ्य न हो तो मानसिक रूप से करे, उसका फल प्राप्त होगा। और ये कलयुग के अंदर विशेष सद्गुण है जिसको देखकर महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्षमा किया। ये एक उदाहरण है कि थोड़ा कुछ अच्छा देखकर उसे बढ़ाना, विस्तारित करना। और प्रभुपाद जी के ही जीवन में हम देखते हैं उदाहरण कि एक भक्त प्रभुपाद के पास आकर अपनी समस्या बता रहे थे कि चार नियम पालन करने में कितना उनको कठिनाई हो रही है, मदिरा पान में, नशा पान में, जुआखोरी में, परस्त्री संग में, ऐसा वैसा एक घंटे तक वो बताए जा रहे थे। और बाकी भक्त लोग सोच रहे थे क्या गया काम से आदमी, तो इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, और ये एक नहीं दो नहीं चारों नियम कैसे तोड़ रहा है, छी 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 छी। और कई भक्त लोग सोच रहे थे नहीं सुनना भी नहीं चाहिए, सुनने से हमको आइडिया आ रहा है, और कुछ लोग उठ के जा रहे थे। और एक घंटे तक उसने अपनी दुर्दशा का बखान किया, वर्णन किया, और फिर श्रील प्रभुपाद ने एक घंटे के बाद सुनने के बाद बाकी भक्त की ओर देखा और देख कहा, जस्ट सी हाउ दिस सोल इज स्ट्रगलिंग फॉर कृष्णा। प्रभुपाद का दृष्टि ये था, देखो कैसे ये जीव कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माया के चंगुल के साथ कठोर संघर्ष कर रहा है, ये प्रभुपाद का दृष्टि था। टू सी लिटिल गुड एंड टू मैग्निफाई। श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि उनको भक्ति में आने से पूर्व कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उनके थे जिसके कारण पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही थी और जेल में उनको कुछ समय बिताना था। तो विचार किया कि प्रभुपाद शायद बहुत क्रोधित होंगे, तो प्रभुपाद के पास आए और कहा प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद आई हैव टू गो टू जेल। तो प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, कृष्णा वाज आल्सो बोर्न इन जेल। उनको बहुत अच्छा लगा रे, प्रभुपाद डांटे नहीं। तो प्रभुपाद ने पूछा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर गोइंग टू जेल? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आई वॉज डीलिंग विद ड्रग्स बिफोर. तो प्रभुपाद ने कहा, नो प्रॉब्लम, आई वॉज ऑल्सो डीलिंग विद ड्रग्स, आई वॉज हैविंग प्रयाग फार्मेसी. चिंता मत करो, कुछ समय तक जाओगे, फिर वापस लौट के आ जाओगे भक्तों के संग में. जब तक जेल में हो हरे कृष्ण जपते रहो. तो उनको ये बात इतनी अच्छी लगी कि प्रभुपाद ने मुझे क्रिमिनल नहीं कहा, या ये नहीं देखा कि ये तो जेल में जा रहा है, अब हरे कृष्ण का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है. केवल उनके सद्गुण देखे कि हाँ भाई भक्ति में कुछ रुचि है, भक्ति करना आरंभ किया है, तो भले अपने पूर्व कर्मवश कुछ समय जेल में बिताना हो, प्रभुपाद विचलित नहीं हुए. तो ये प्रभुपाद की विशेषता थी, टू सी लिटिल गुड एंड मैग्निफाई. थोड़ा सा कुछ अच्छा देखना और उसको विस्तारित करना. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन निष्कर्ष में यही हम कहना चाहेंगे कि ये छह प्रकार के दृष्टि प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान हो सकते हैं. हमें चाहिए कि प्रथम स्तर से उठकर छठे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है. फ्रॉम द स्टेज ऑफ सीइंग ओनली बैड वी शुड ट्राई टू कम टू द स्टेज ऑफ ट्राइंग टू मैग्निफाई वॉट एवर लिटिल गुड वी सी इन अदर्स. अगर हम ऐसा कर सकें तो फिर हमारा प्रचार कार्य सफल हो सकता है, तब जाकर हम भक्ति में संतुष्ट रह सकते हैं, सुखी हो सकते हैं. अन्यथा दूसरों के अंदर दोष दर्शन करके जितनी भक्ति में उत्साह है वो भी क्षीण हो जाएगी, हतोत्साहित हो जाएंगे, और धीरे धीरे भक्तों के संग में भक्ति मार्ग भी बड़ा ही नीरस लगने लगेगा. इसलिए हमें चाहिए कि बड़े सावधानी से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें. हरे कृष्ण. तो किसी का कोई प्रश्न है?
प्रभु जी, द बिहेवियर ऑफ द्रौपदी विद अश्वत्थामा, इन विच कैटेगरी वी कैन से दैट इट इंक्लूड?
शी फॉरगेव अश्वत्थामा. अर्जुना वांटेड टू किल, द्रौपदी से छोड़ दो, क्योंकि उसकी माँ के साथ क्या बीतेगी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अपने पुत्रों को खो चुकी हूँ. सो डेफिनेटली इट वॉज पॉजिटिव. या
This question may have been asked many times before, but still, since it is relevant to this topic, I'm asking it again. In our movement, because it's a preaching mission, and you know, over a period of time, everybody is somehow related to some kind of preaching at least. So we always have to, you know, find some kind of faults in people, etc. So then what happens is that attitude always gets carried on. Means even when we are not doing that job, then that attitude is there, you know, of discriminating and finding this is correct, this is not correct, these are the faults, etc. Because of the nature of the service. So how does one decide that, okay, so now this is preaching related work, so here I have to find faults or something for the sake of seva. But now this is not, so I should not, you know, where... How to do that kind of balancing?
It comes with practice and it comes with mercy. More than preaching, management requires discrimination. And therefore, if one is not careful while managing, one may get caught up in this spiral of seeing the bad qualities. And all of us face this situation. Therefore, one should always make a conscious effort to introspect and especially spend some time glorifying devotees, glorifying other services, because it just throws a lot of weight from within outside. तो थोड़ा समय निकालना चाहिए जब हम भक्तों की स्तुति करें, भक्तों का सद्गुण देखें, एंड दैट शुड बी जेन्युइन। और जब हम दूसरों को कोई अच्छा सेवा करते हुए देखें तो उसको बधाई दें। वी आर वेरी क्विक टू पाउंस ऑन पीपल व्हेन दे डोंट परफॉर्म समथिंग, बट वी आर वेरी स्लो टू कॉम्प्लीमेंट व्हेन समवन डज समथिंग गुड। ये समस्या है। कोई कुछ अच्छा सेवा कर देता है तो हम लोग कहते ठीक है, तो होना ही था, ये क्या है। और कुछ नहीं करता तो तुरंत पकड़ लेते, क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम किसी के साथ सेवा करें तो दूसरों के सद्गुणों को देखकर, जो उनके सद्गुण हो, भले सब जानते हो, वो भी जानते हो, हम भी जानते हो, लेकिन फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए उसके विषय में दो शब्द बोलना कुछ बुरी बात नहीं। तो ये आवश्यक है, बिकॉज दैट पॉइजन कैन बी काउंट्रैक्टेड ओनली विथ नेक्टर। और दूसरे, हमें चाहिए कि थोड़ा समय, यदि हमेशा हम भक्तों के संग में रहें तो केवल उसी सर्कल में फंस जाते हैं, तो नए लोगों के साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि वास्तव में हम अभी कौन से स्तर पर थे और किस तरह से हमें इन लोगों को उठाना है, तो फिर अपने आप एक अनुकंपा की भावना आती है। When there is a potential difference, you know, so the current flows. So when you are in touch with new people and it's your responsibility to uplift them, so your mercy nature or your compassion nature flows out. उनको मदद या सहायता करने की जो भावना है वो अपने आप उत्प्रेरित होती है। And with the flow of that mercy, then all the other poison which is there within gets dissolved. तो अंदर जो कड़वाहट भी होगी वो भी उसमें पूरी तरह से उसके प्रभाव से नष्ट हो सकता है। इसलिए प्रचार करते रहना चाहिए। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो अंदर जो मैल है, जो द्वेष है, वो हमको खा जाएगा। इसीलिए प्रचार क्यों करना चाहिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि प्रचार करते तो हम क्या करते हैं, वो कृपा का जो आउटलेट है, जो पाइप से कृपा की वर्षा होती है, उसको हम ऑन करते हैं। और जब कृपा का सप्लाई बाहर आने लगता है तो रास्ते में जितने भी कचड़े हैं उसको सब खींच कर वो बाहर फेंक देता है। इसलिए प्रचार करते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रचार नहीं करता, वो आउटलेट बंद है, तो कचरा अंदर जमा होता रहता है। सो देयरफॉर वन हु प्रीचेस, ही मेक्स स्पिरिचुअल एडवांसमेंट फास्ट, बिकॉज महाप्रभुज मर्सी एक्ट्स। तो इसलिए भले हम अधिक प्रगतिशील ना हो, लेकिन दूसरों की सहायता करें भक्ति में, उनको भक्ति में आगे बढ़ने का यदि प्रयास करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का, उनकी सहायता करने का, तो अंदर से महाप्रभु की विशेष कृपा बरसेगी। तो समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम लोग केवल दोष दर्शन ही करते रहेंगे, ये ऐसे है, वो ऐसे है। तो डिस्क्रिमिनेटिंग तो हमको होना चाहिए। केवल हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं कई बार तो हमेशा दोष ही देखते रहते हैं। अरे ये करताल नहीं बजाता, ये मृदंग नहीं बजाता, ये मृदंग में डुंग 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 ऐसा आवाज करता है, ऐसे टुंग 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 ऐसा आवाज करना चाहिए, और इसका करताल टिंग 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 बजता है, पिंग 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 बजना चाहिए। तो पूरा हम लोग उस मोड में घूम जाते हैं। तो एक दिन जाओ नए प्रोग्राम में और गाओ कीर्तन, और वहां करताल का फंक्शन क्या है वहां मालूम नहीं लोगों को, ये दो चीज जो पड़ा है वो क्या है, फ्लाइंग सॉसर है क्या है, ऐसे अवस्था में लोग रहते हैं। और उनको बोलो आप करताल बजाने के लिए, वो कुछ तो ऐसा बजाएंगे उसकी तुलना में आपके भक्त जो मंदिर वाले वो तो बिल्कुल गंधर्व लगेंगे आपको। तो कई बार हम जाते हैं न्यू प्रोग्राम में, और न्यू प्रोग्राम में गाने वाले हम, बजाने वाले हम, और एक करताल अपन कभी किसी को दे देते हैं, वो आदमी भी बोर होके अपने बच्चे को दे देता है। कई बार मेरे साथ प्रोग्राम में होता है, फिर वो बच्चा लेकर नारद मुनि के समान घूमता रहता है सब पूरे हॉल में, और कभी मूड हुआ टंग बीच में बजा देगा, और परेशान हो गया तो किसी के सिर पे बजा देगा वो। और तब हमको लगता है यार वो अपने मंदिर में वो सो एन सो दास करताल बहुत अच्छा ही बजा रहे थे वैसे। तो इसलिए कभी फील्ड में घूम के आना चाहिए, हमेशा यही घूमते रहेंगे तो बिल्कुल हर चीज अपने को उल्टी दिखेगी, और इसलिए हमेशा अगर ड्रेसिंग करते रहते हैं तो अपने को भगवान को भगवान से ज्यादा फिर वही दिखता रहता है, ये यहाँ पिकॉक फेदर ये ठीक नहीं है, ये इधर ये गार्लैंड ऐसे क्यों ऐसे होना चाहिए, ये चेन ऐसे क्यों ऐसे होना चाहिए, तो वही घूमता रहता है। बाकी बेचारा नया आदमी आके भक्ति के साथ वो दर्शन दे रहा है, वो भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, हमको लग रहा है ये ठीक ही नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए बाहर जाओ, और बाहर जाके जब पता पड़ेगा कि किसी को कुछ लेना देने भगवान खड़े हैं नहीं खड़े हैं, तो फिर पता लगता है कि हाँ भाई जो कुछ प्राप्त किया वो बहुत कृपा है। सो देयरफॉर यू हैव टू स्पेंड टाइम इन प्रीचिंग। या आई डोंट नो डू वी हैव टाइम, इट्स 10:10। या स्विच ऑन।
टुडे इन मार्केट क्वालिटी एश्योरेंस जॉब्स आर देयर,
क्वालिटी एश्योरेंस जॉब्स
इन सॉफ्टवेयर फील्ड,
सो व्हाट काइंड ऑफ विजन यू शुड हैव।
If I only see good. Little good and magnified all the time, then software. So, can we consistently live with the best vision? That is the question.
तो आपने बिल्कुल technical question पूछ दिया आपका. This is I'm talking of devotee association, not your, you know, quality control.
Sir,
if you are a quality control manager, and you have to check the quality of rivets and quality of, you know, steel pipes and this and that, and you see some blow holes and this and that and think, no, no, I cannot see bad. I should only see good. If you are in charge, supervisor, and you know, your labor is only putting sand and little bit cement, you know, just for name's sake, and then you are thinking, he is putting at least this much cement. Let me magnify it. तो ये महान है, और एक दिन में घर नीचे गिर गया, क्या हो गया, गिर कैसे गया, नहीं नहीं वो थोड़ा सीमेंट डाला था, वो लेबर भी महान थे। तो वहां पे आपको ऐसा नहीं करना है। जब जॉब की बात आती है, आपको जो जॉब दिया है वो करना है। तो प्रभुपाद भी जब शिष्यों को ट्रेनिंग देते थे तो जिसके साथ जैसे संबंध था उसके अनुसार ट्रेनिंग में कभी कोई छूट नहीं की, लेकिन इस तरह से ट्रेन किया कि वो समझ भी जाते। जैसे प्रभुपाद के एक पेंटर को प्रभुपाद ने पेंटिंग करने को कहा तो उन्होंने पेंटिंग किया राधा और कृष्ण का। जो एक फोटो प्रभुपाद ने दिया था, कृष्ण और राधा रानी इस तरह गार्लैंड दे रही है, तो राधा रानी का हाथ ऐसे बनाने के बदले वो पेंटर ने राधा रानी का हाथ ऐसे बना दिया, कृष्ण इधर राधा रानी हाथ इधर करके गार्लैंड इधर दे रही। तो प्रभुपाद ने देखा पेंटिंग का, सो राधा रानी हैज अनदर बॉयफ्रेंड, राधा रानी किसको दे रही है। तो घबरा गए वो देख के, अरे हाँ मैंने तो उल्टा कर दिया। नो नो नो, एक्चुअली राधा रानी लाइक योर पेंटिंग सो मच, शी इज गिविंग गार्लैंड टू यू, आपको बुला के गार्लैंड दे रही है, कोई चिंता मत करो।
सो यू मीन टू से वी शुड सेपरेट स्पिरिचुअलिटी एंड आवर फील्ड वर्क,
बेसिकली यूज कॉमन सेंस,
ओके
दैट इज ऑल। तो इफ यू हैव कॉमन सेंस एंड देन यू आर सिंसियर, then you will know how to discriminate like that.
Exactly.
Okay.
I have one more question. I was thinking some questions in mind. And
like just like cook, you know, if cook doesn't put salt in the prasad, and all of you after this long Bhagavatam class, you are hungry and you have served some prasad and there is no salt at all, or there is very little salt, and then you complain, namak hi nahi hai. Should see little salt. थोड़ा तो नमक दिया है। No, he has made a blunder, so he has to be corrected. So it's like that. It's not that. So in temple means everything is spiritual. So you cannot say anything bad here to anyone. No. So you may just, you need not go to the kitchen and start pounding the cook and start chastising him. But whatever needs to be done at the managerial level, that will be corrected so that things are all right.
I have one more question. Few questions were answered by you automatically. How this happens? Means I was thinking for some questions in mind here itself, and you was automatically telling answer to my questions. How this happens?
So it's the Paramatma's mercy that somehow certain points came up which got answered.
I have more experiences in my town, Buldana. One officer I was expecting who I'll handle system more clearly, and Krishna Prakash came. Krishna Prakash.
Who's this?
Krishna Prakash is superintendent of police in Buldana district.
Okay.
He has controlled very nicely. So how this happens, that is a question.
Sometimes the Lord can work in very inconceivable ways, and we should be feeling humbled when this happens. At the same time, something extraordinarily difficult can also happen. That time also we should remember it is the same Lord only
exactly.
who is doing it.
Yes.
Okay. Any? Yeah. Our Swayam Rup, Shyam Rup Prabhu.
Roger.
Yeah.
As you have...
You're in front of the speaker, yeah.
Yeah, as you were mentioning so nicely, some people have this wrong attitude of catch people doing things wrong. But it should be ideally exactly the opposite, catch people doing things right. At the same time, I heard from another senior devotee who spoke that if we sometimes glorify some devotee too much, then he just feels satisfied with what he's doing. So how do we balance between the two? That not seeing fault, glorifying at the same time, not that he becomes complacent with what he is doing.
Yes, that requires judgment and maturity and ultimately relationship. If you have a proper relationship, you know the person, so you know. Just like a father takes care of child. Prabhupada said, management means to get things done without breaking someone's back. So you know whom you are managing in your department or in your preaching or whatever. You know their strengths and weaknesses. So you give them responsibility accordingly. And then inspire them. And then correct them. So the whole idea is, you have to inspire them with encouraging words. At the same time, when things don't happen properly, then you should also correct. Now there is no magic formula. For someone, more glorification may be required. For someone, more correction. Right? So basically, it all depends on which scale people are. People are suffering from, people are leading their lives with different degrees of, or different varieties of infection of false ego. So false ego is an infection. But it manifests in different ways. In some, it manifests in the form of superiority complex. And in some, it manifests as inferiority complex. Both are manifestations of false ego only. Right? That's because of identification. So when someone is already feeling superiority, is feeling I am greater than others, and you keep glorifying him more and more, yeah, what you are thinking is right. You are greater. You are very great. So his infection will go on increasing more. So for someone who is already on this side, you have to definitely give him good feedback, but at the same time keep him under check. And someone you know is always feeling inferior. Oh, I am so fallen. I am most fallen. I am the most fallen. I can't do anything well. Nobody likes me. Nobody loves me. Nobody glorifies me. Nobody appreciates me. I am nobody. So, and then you tell him, yes, you are nobody. You are right. That is a correct observation. And you were nobody, but now you are totally nobody because you don't know how to do this also. And you keep chastising him, then he'll be crushed. So if somebody on the inferiority complex side commits a mistake and you just pounce on him, then he'll be finished under the ground. So you should know whom you are dealing with. What kind of which variety of infection he's dealing with, so the treatment has to be accordingly. So that is your discretion. So someone may think that ye thoda sa kuch karta hai, inko bahut glorify karte rehte, aur main itna kuch karta hu, phir bhi theek hai, itna hi kehte hai, kya hai? Lagta hai mujhse dvesh karte hai. Kai baar aise logon ko lagta hai. Nahi. वो उनका बीमारी ऐसा है कि वो थोड़ा कुछ करो और इतना एनकरेज करने के बाद वो व्यक्ति थोड़ा और करेगा, क्योंकि उसके लिए आवश्यक है वो सुनना, और दूसरे के लिए आवश्यक है कि थोड़ा भारी ऊपर से कुछ गिरे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग डिजीज होता है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर को ट्रीटमेंट देना है कि नहीं। डॉक्टर के कैबिन में एक स्टैंडर्ड सुई नहीं रहता उसके पास, एक बड़ा ऐसा सुई और एक इंजेक्शन लेके ऐसे सामने रख देता है लिंक की तरह, और जैसी आए हु खांसी सर्दी हु हाथ फ्रैक्चर हु सरदर्द हु। डॉक्टर कभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रखते हैं क्या? हाँ, मैं तो बस स्टैंडर्ड डॉक्टर हूँ, ISO 2000 स्टैंडर्डाइज्ड है अपना। चाहे पेट में दर्द हो, कमर दर्द हो, बदन दर्द हो, कुछ भी हो, ये सुई ऐसी सब दर्द दूर कर देगी। तो आपका मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे व्यक्ति थोड़ा सा परेशानी लेके आए, बड़ा परेशानी लेके आए, उसका पर्सनैलिटी ऐसा हो वैसा हो, अपना तो बंदूक तैयार है। अगर इस तरह से आप करोगे तो फिर विध्वंस हो जाएगा। तो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग इंजेक्शन लगता है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, बहुत टाइम हो गया भाई। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नितय गौड़ प्रेमानंदी।